ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 28वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 28। श्लोक है युञ्जन नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं अत्यंतं सुखमश्नुते। श्लोक दोबारा। युञ्जन नैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। श्लोक का संधि विच्छेद है युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखम अश्नुते। संधि विच्छेद दोबारा। युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखम अश्नुते। शब्दों का अर्थ है एवं अर्थात ऐसे, सदात्मानं अर्थात आत्मा को सदा, युञ्जन अर्थात संयुक्त करता हुआ, विगत कल्मषः अर्थात पाप रहित, योगी अर्थात योगी, सुखेन अर्थात सुखपूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम अर्थात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्शयुक्त, अत्यंतम अर्थात अतीव सुखम अर्थात सुख, अश्नुते अर्थात भोक्ता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। एवं अर्थात ऐसे, सदात्मानं अर्थात आत्मा को सदा, युञ्जन अर्थात संयुक्त करता हुआ, विगत कल्मषः अर्थात पाप रहित, योगी अर्थात योगी, सुखेन अर्थात सुखपूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम अर्थात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्शयुक्त, अत्यंतम अर्थात अत्यु, सुखम अर्थात सुख, अश्नुते अर्थात भोगता है। श्लोक का अर्थ है, ऐसे आत्मा को सदा संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है। श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ ज्यादा नहीं है, इसलिए क्लैरिफिकेशन वाले शब्दों के साथ ही अर्थ पढ़ते हैं। ऐसे आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक साक्षात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है। अतीन्द्रिय सुख के बारे में हमने इसके पहले भी चौथे पांचवे और छठवे अध्याय में भी काफी श्लोक देखे हैं इसके पहले। आज के श्लोक में भी यही बात है, जैसे कल के श्लोक में बताया कि भली भांति शांत मन वाले को ऐसा सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, तो पहले शांति उसके बाद सुख की प्राप्ति। और आज के श्लोक में ये बात का उल्लेख है कि आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ जोड़ता हुआ, योगी जो है वो तो बुद्धि योग सदा भगवान से जोड़ता है, तो इसी तरह से यहाँ आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ, आत्मा अर्थात मन बुद्धि, तो पूरी तरह से एकाग्र करके जो शिव बाबा से बुद्धि योग जोड़ता है, संयुक्त करना अर्थात इतना एकाग्र हो जाए, मन बुद्धि से पूरा लव में लीन हो जाए, तो ऐसा पाप रहित योगी सुख पूर्वक साक्षात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है। जैसे कल के श्लोक में उल्लेख आया सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख, इसी तरह आज के श्लोक में उल्लेख आया है अतीव सुख भोगता है, अर्थात तो इतना ऊंचे क्वालिटी का सुख है उसके बारे में ही बताया अतीव सुख या सर्वोत्तम सुख है अतीन्द्रिय सुख। लेकिन कब होगा? तो पाप रहित योगी, पूरी तरह से पाप जब भस्म हो जाते हैं, तो ऐसे पाप भस्म होने के बाद जब आत्मा पूरी हल्की हो जाती है तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। मुरलियों में जैसे उल्लेख आता है जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते जाएंगे, तो मुरलियों में इस बात का उल्लेख है 63 जन्मों के पाप कर्म जब पूरे भस्म हो जाएंगे तो उस समय ये दोनों अरस परस बातें हैं, पापों का बोझ ज्यादा है तो उसके कारण भी याद में इंटरफियर करते हैं 63 जन्मों के हिसाब किताब, और जितना जितना याद की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी विकर्म विनाश होते जाएंगे उतना आत्मा हल्की बनकर उड़ेगी, तो याद के द्वारा ही ऐसे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती जाएगी, अर्थात तो अति सुख जो है परम ब्रह्म से प्राप्त होने वाला और सुख योगी भोगता है। इस श्लोक को समझने के लिए ही रेफरेंस श्लोक लिया है पांचवे अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 21। इसमें कल भी ये श्लोक हमने रेफरेंस में देखा था, अतींद्रिय सुख के लिए समझने के लिए। आज यहाँ इस श्लोक का रेफरेंस इस हिसाब से लिया है। एक तो बाहरी विषय भोगों से अनासक्त पुरुष आत्मा में मन का सुख पाता है, तो आत्मा में मन का सुख पाने की बात बताई यहाँ, लेकिन कब? वह परम ब्रह्म से योग युक्त हुआ। आज के श्लोक में उल्लेख आया है शिव बाबा से संयुक्त हुआ। इसी तरह से ये तो हमने इसके पहले भी कई पॉइंट्स में समझा है इस बात को कि जो मुकरर तन है शिव बाबा साकार निराकार का मेल है, वही परम ब्रह्म है, बड़े से बड़ा ब्रह्म है और उनसे योग युक्त हुआ अकुट अतींद्रिय सुख भोगता है। जो आज के श्लोक में भी बात आई कि शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ सुख पूर्वक परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अति सुख भोगता है। अब दूसरा श्लोक है रेफरेंस के लिए, आगे का श्लोक है रेफरेंस के लिए, चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10। इसमें बात आई है राग भय क्रोध रहित मेरे में ध्यान मग्न मेरे पूरे आश्रित बहुत लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से पवित्र बन मेरे भाव को पाया है। तो राग भय क्रोध रहित अर्थात पूरी तरह से इन सब बातों से ही विकर्म होते हैं, तो इन सब बातों से रहित जो हो जाता है वो ऐसी तपस्या से मेरे भाव को पाता है। अभी यह प्रश्न है कि सुख पाना और मेरे भाव को पाना अर्थात भगवान को पाना, इसमें अंतर है या एक ही है? तो इसे समझने के लिए ही 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 27, इसमें इस बात का उल्लेख है मैं शिव बाबा ही अविनाशी परम ब्रह्म की और स्वर्गीय अमर लोक की तथा शाश्वत धर्म की और विष्णु के आत्यंतिक अतींद्रिय सुख की एकमात्र आबरू हूं। अर्थात यहाँ इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है अध्याय 14 के श्लोक नंबर 27 में, भगवान को पाना अतींद्रिय सुख पाना मेरे भाव को पाना ये सब बातें एक ही है और एक ही स्थान है शिव बाबा, उसी में ही सब कुछ समाया हुआ है। जैसे मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं याद में ही सब कुछ समाया हुआ है और वो याद वही मुकरर तनधारी परम ब्रह्म शिव बाबा, वही अविनाशी परम ब्रह्म अमर लोक शाश्वत धर्म की और अत्यंतिक अतींद्रिय सुख की आबरू हो। आज के श्लोक में बात आई है पाप रहित योगी अतींद्रिय सुख अर्थात अतीव सुख पाता है परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त, और 5वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 25 में पाप नाशक की बात आई है कि सर्व पाप नाशक द्विधा रहित और मन बुद्धि के वश करता परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते है। श्लोक का पूरा अर्थ इस हिसाब से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आज के श्लोक में जो बातें टैली होने जैसी श्लोक में आई है केवल उसी बात को हम समझेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। आज के श्लोक में पाप रहित योगी की बात आई और अध्याय 5 के 25वें श्लोक में सर्व पाप नाशक द्विधा रहित मन बुद्धि के वश करता परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। अब यहाँ परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाना अर्थात ही शांति की अनुभूति करना, कल के श्लोक में भी जैसे बात आई थी भली भांति शांत मन वाले, तो शांत मन के बाद यहाँ जो निर्वाण धाम की ऐसी वाणी रहित अवस्था की प्रैक्टिस करते हैं और याद के द्वारा उनको पूरी तरह से परम धाम के शांति की अनुभूति यहाँ ही होती है। और ये सब बातें तो एक ही है, पाप विनाश हो जाएगा तो अतीन्द्रिय सुख की जिसे कलातीत सुख, अतीव सुख, सर्वोत्तम सुख या सहज राजयोग, इस तरह से अलग अलग शब्दों में उल्लेख किया हुआ है। और ये सबकी प्राप्ति जो अभी तक रेफरेंस श्लोक आज के श्लोक संबंधित हमने देखे, इसमें यही बात है जो शिव बाबा से बुद्धि योग जोड़ता है, पाप रहित होता है तो ऐसा योगी ही पवित्र बनकर मेरे भाव को पाता है, निर्वाण पद की परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। और उसके अलावा बताया अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं। और ये सबका सार ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में बताया, क्योंकि मैं शिव बाबा ही अविनाशी परम ब्रह्म की तथा अमर लोक की, शाश्वत धर्म की और अत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख की एकमात्र आबरू हूँ। तो शिव बाबा में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो ये आज के श्लोक का रेफरेंस श्लोक सहित अर्थ हमने देखा। अतीन्द्रिय सुख के बारे में हमने इसके पहले भी काफी बातें समझी है, जो इंद्रियों से परे का सुख है, वाइब्रेशन का सुख है। और वो तभी प्राप्त हो सकता है जब लगातार निरंतर के योगी बनेंगे। और दूसरी बात, आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ अर्थात ही सदैव जोड़ते हुए अपना बुद्धि योग जो निरंतर योगी है और पाप रहित हो जाते हैं, पूरी तरह विकर्म विनाश हो जाते हैं, तभी अवस्था एकदम ऊंची चढ़ेगी और अतीव सुख परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख अर्थात अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो सकती है। ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक प्लस अर्थ, उच्चारण सुनते हैं उसके बाद पॉइंट्स।
संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। ऐसे आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक साक्षात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है। ऐसे आत्मा को सदा शिव बाबा से संयुक्त करता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक साक्षात परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अतीव सुख भोगता है।
आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1130, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1130, पाप नाश होने के बाद ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति।
यहाँ वहां से भी जास्ती खुशी है। कहां से? वहां माने स्वर्ग से जास्ती खुशी कहाँ है? संगम युग में जास्ती खुशी है,
लेकिन अभी महसूस करते हैं
है? अभी संगम में महसूस करते हैं जास्ती खुशी है, स्वर्ग में तो जाने की दरकार नहीं है। बाप मिला तो खुशी है, घर का बंधन तो महसूस नहीं होता है, होता है तो दुखी आती है ना। दुख कम, लेकिन दुख होता है ना, थोड़ा भी होता है लेकिन स्वर्ग में थोड़ा सा दुख होगा। तो यही तो बताया कि वहां से यहां तुम्हारी खुशी जास्ती होनी चाहिए।
सुख मिलेगा मुझे, बाप नहीं मिलेगा।
अच्छा ठीक है, हम यहाँ मुख्य बात तो बाप की नहीं है, यहाँ मुख्य बात है सुख की, खुशी की। वहां दुख कभी होगा ही नहीं स्वर्ग में, ना खुशी होगी ही नहीं। लेकिन बाप कहते हैं वहां जितनी खुशी है उससे जास्ती खुशी यहां महसूस होनी चाहिए, तो वो हो रही है। झूठी बात बोलते हैं। हाँ अभी कुछ कह रहे थे, अभी कुछ कहने लगी माता।
हैं?
नहीं, ये इशारा दिया कि बाप जब तुम्हारे सामने संपूर्ण प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या अभी तो कभी निश्चय होता है बाप के ऊपर और कभी अनिश्चय पैदा हो जाता है। कभी समझते हैं हमें बाप मिला और कभी ब्रह्म कुमारियों के कहने से या दुनियादारी के लोगों के कहने से अनिश्चय पैदा हो जाता है, माया अनिश्चय पैदा करा देती है। तो कभी मिला कभी नहीं मिला, सदैव तो मिला नहीं मिला। तो ऐसी स्टेज भी आवेगी संगम युग में कि तुम्हें महसूस होगा कि हमें सदैव बाप मिला हुआ है, बाप से तुम कभी भी जुदा अनुभव करेंगे ही नहीं, ऐसी स्टेज हो जाएगी। जब ऐसी तुम्हारी स्टेज हो जाएगी कि बाप सदैव तुम्हारे संग रहेगा, सदैव याद रहेगा, तब तुम्हारी ये स्थिति हो जाएगी संगम युग में कि तुम सदैव खुशी रहेंगे। जो स्वर्ग में सुख तुम अनुभव नहीं करेंगे उससे जास्ती सुख संगम में अनुभव करेंगे। तो संगम युग ऊंचा या सतयुग स्वर्ग ज्यादा ऊंचा? संगम युग ज्यादा ऊंचा। इसलिए संगम युग के नारायण की पूजा होती है, कथा होती है सत्यनारायण की। सतयुग के जो भी नारायण है उनको सत्यनारायण नहीं कहा जाता है, कहा जाता है वो सत्यनारायण नहीं है। संगम युग की महिमा सबसे जास्ती है, लेकिन हम बच्चे अभी अपना पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाए हैं। क्या अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों को अभी हमने भस्म नहीं किया है, इसलिए जो अतीन्द्रिय सुख हमको अनुभव होने चाहिए वो अभी अनुभव नहीं हो रहा है। एक बार अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति अगर शुरू हो गई तो मुख में जो अच्छे अच्छे लड्डू पेड़ा खाने बनाने की चाव लगी रहती है वो चाव उड़ जाएगी। आंखों से जो अच्छे अच्छे सुंदर चेहरे सुंदर दृश्य देखने की ललक लगी रहती है वो ललक खत्म हो जाएगी। अति इंद्रिय सुख माने इन इंद्रियों बाहर की इंद्रियों के सुख में हम रमण नहीं करेंगे। जो मन का सुख है, अंदर का सुख जो हमें ईश्वर से ही प्राप्त होता है, ईश्वर की याद से, उसमें हम रमण करेंगे। इन आंखों से जो कुछ भी संसार में देखते हैं, बुद्धि में बैठा होगा, ये सब विनाशी है। क्या इतनी ऊंची ऊंची महल माणियां अटारियां दिखाई पड़ रही हैं दुनिया में, अमेरिका में जाओ तो तबीयत खुश हो जाए। हैं? लोग जाते हैं ना, हैं? तो अभी तो आंखें ये अनुभव करती है यही स्वर्ग है, फिर क्या होगा? तो चारों तरफ दुनिया में एटम बम फटेंगे, कभी ये शहर गर्त हुआ, कभी वो शहर ने इस्तनाबूद हुआ, कभी न्यूयॉर्क गड्ढे में गया, कभी लंदन गड्ढे में गया। ऐसी स्थिति जब हो जाएगी संसार में, तब तुमको सच्चा बैराग आवेगा, समझ में बुद्धि में बात बैठ जाएगी, इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं वो सब विनाशी है, ये सुख देने वाला नहीं है। लेकिन अंदर की तीसरी आंख से जो हम नई दुनिया देखते हैं, वो देखने में हमको मजा आने लगेगा। जैसे अभी स्थूल आंखों से टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है ना है? अभी इन बाहरी आंखों से मजा आता है, क्योंकि अभी बहिर्मुखी वृत्ति को हमने अंतर्मुखी वृत्ति नहीं बना पाया। जब हम अंतर्मुखी वृत्ति बना लेंगे प्रैक्टिस करते करते, तो इन बाहर की दुनिया में हमारा कहीं भी मन नहीं लगेगा। इसलिए बाप कहते हैं कि यहां की दुनिया में, संगम युग की दुनिया में, वहां से भी जास्ती खुशी है। अगर तुम उस खुशी का रियलाइजेशन कर सको तो, क्यों? क्योंकि सतयुग में, स्वर्ग में बाप हमारा रक्षक नहीं होगा, होगा वहां बाप रक्षक नहीं होगा। हम कितना भी चाहें तो भी हमारी आत्मा की कलाएं कम होती जाएंगी, आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाएगी, हम नीचे गिरते जाएंगे। और यहां यहां भल माया हमारे ऊपर बहुत अटैक कर रही है, घड़ी घड़ी अटैक करती है, फिर भी यहां हमारा रक्षक कौन है? बाप हमारा रक्षक है। हमें पक्का है, सर्टेन है कि हम ऊंचे उठने वाले हैं। क्या कुछ भी हो जाए, लेकिन हम नीचे गिर करके नष्ट होने वाले नहीं है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि बाप हमारा रक्षक है।
आज के श्लोक में बात आई है, पाप रहित योगी अति सुख भोगता है। यही बात पॉइंट में बताई कि पूरे पाप नष्ट होने के बाद अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। संगम युग में ही ऐसा समय आएगा जो बाप साथ से दूर होंगे ही नहीं, सदैव साथ का ही अनुभव होगा। जो श्लोक में बात आई, परम ब्रह्म का संपूर्ण स्पर्श युक्त अति सुख भोगता है। आगे का पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 279, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 279, याद में रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा।
अगर याद में रहे तो जरूर खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, याद में नहीं रहते हैं तो ढीले पड़ जाते हैं। अर्थात रीढ़ बकरियां बन जाते हैं, रीढ़ बकरी बन जाते हैं, कोई काम के नहीं है क्या? बकरी दूध नहीं देती है क्या? ऐसे कच्चे बन जाते हैं कि जो जो कुछ सुनाएगा सत वचन महाराज सत से विश्वास कर लेंगे, साहब को डायरेक्टर बना लेते हैं। वंडर ये है कि ऊंच के ऊंच बात को भी भूल जाते हैं। जो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, ऐसे बाप की हूबहू चलन की बातचीत वो करना ही भूल जाते हैं। जैसे बाहर वालों से मिल जाते हैं। ये भी बच्चे समझते हैं कि हम बादशाही के दर पर हैं, बाबा घर में आया है तो जैसे कि बादशाही आ गई। इस बात में तो कोई शक नहीं है, इस बात में कि बाबा हमारे घर पर आया है, हमारे घर पर आया है तो जैसे हमारे लिए बात सही लाया। अब मकान बनता है तब तक नशा रहता है, मकान फिनिशिंग होने पर चलेगा रहेगा तो फिर खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। यहां फिर समझते हैं कि बाबा के साथ तो हमको बहुत मजा है, प्याले के ऊपर प्याला मिलता रहता है और बाप पिलाते रहते हैं। बाप के साथ रहना स्वर्ग से भी जास्ती ऊंचा है, परंतु जिनके तकदीर में नहीं है तो फिर वो तकदीर क्या करेंगे।
आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 1320, वीसीडी नंबर 1320 29 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, शांति और अतीन्द्रिय सुख बाप ही देते हैं।
स्वर्ग बाप ही बनाते हैं क्योंकि बाप ही सदाकाल सुख में रहने वाला है, स्वस्थिति में रहने वाला है, सुख शांति का सागर है। तो बाप कहते हैं तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बना बजाया है और ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग में पाठ बजाते बजाते दुख भोगते भोगते अभी अंत में आ गए हो। ये सारा मनुष्यों का झार पुराना जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुमको वहां जाना है जहां इस दुनिया का दुख की दुनिया का कोई भी गम नहीं रहेगा। तो अपन को हल्का आत्मा बना दो, हल्का कर दो, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा खत्म हो जाएगा। इस ब्रह्मा ने भी हल्का कर दिया ना, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, हल्का हो गया ना, तो इनके सभी बंधन टूट गए। नहीं तो दुनिया में बच्चे, धन, कारखाना, ग्राहक, राज रजवाड़े, क्या क्या याद आती रहती। अब सारा धंधा ही छोड़ दिया तो फिर क्यों याद आवेगा। यहां तो तुम बच्चों को सभी कुछ भूलना है, इस दुनिया की सारी बातों को भूल करके अपने घर जाना है और अपनी राजाई को याद करना है। शांति धाम सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। ये भी जानते हो कि शांति धाम से फिर हमको यहां आना पड़े, वहां शांति में तो नहीं बैठ जाएंगे। शांति में रहना जरूरी है या सुख शांति दोनों में रहना जरूरी है। आत्मा की चाहना क्या है, किसी को बुखार आता है उसको रसगुल्ला दे दो तो खाने की दिल होगी। तो सुख की चाहना पहले या शांति की चाहना पहले? हर मनुष्य आत्मा पहले शांति चाहती है। जब बुखार उतर गया, अशांति खत्म हो गई, तब फिर कहते हैं हमको सुख चाहिए, भोजन चाहिए, अच्छा अच्छा खाना पीना चाहिए। तो पहले आत्मा शांति धाम जाती है, शांति का अनुभव करती है, बाद में सुख में आना पड़े। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। इसको योगाग्नि कहा जाता है। किसके साथ योग लगाना है? जो सदैव सही स्थिति में रहने वाला है उसके साथ योग लगाना है। और ये राजयोग है, इसमें राज भरा हुआ है। जो जितना मेरे को जास्ती याद करेंगे उतना ही जास्ती सुख पावेंगे।
कल के श्लोक में बात थी पहले शांति, और शांति भली भांति जब मन हो जाता है तो फिर अतिंद्रिय सुख की महसूसता होगी। और आज के श्लोक में बात आई है पाप रहित योगी। ये दोनों संबंधित इस पॉइंट में बात थी। एक तो जितना विकर्म विनाश होंगे हल्के होते जाएंगे, और साथ ही साथ बताया पहले शांति उसके बाद सुख की अनुभूति। तो पहले शांति धाम जाते हैं फिर सुख की अनुभूति करते हैं। तो दोनों श्लोक से संबंधित ये पॉइंट था। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 694, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 694। याद में रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा।
अंत में तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अंत में क्या खास बात हो जाएगी? अभी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि 63 जन्मों के पापों का बोझा बहुत है, तो तुम्हारी खुशी को दबाए देता है। और तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहेगा।
इसके पहले भी एक पॉइंट हमने देखा था खुशी का पारा चढ़ने की बात। जितना याद में रहेंगे तो अंत में वो खुशी का पारा ऐसे चढ़ेगा जैसे अतिंद्रिय सुख के लिए बताया। एक बार शुरू हो जाता है तो खत्म नहीं होता। तो ऐसे लगातार याद की प्रैक्टिस से विकर्म विनाश होने के बाद वो पारा चढ़ा ही रहेगा। आगे सिलेक्टेड पॉइंट है 1417, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1417। अतिंद्रिय सुख का गायन अंत समय का क्यों है?
इंद्रिय सुख और अतिंद्रिय सुख में अंतर क्या है?
इंद्रियों का सुख इंद्रियों से रोग आ जाता है। अतिंद्रिय सुख इंद्रियों की दरकार ही नहीं है। इंद्रियों से बड़े स्टेज बना करके भोगा जाता है। अतीत इंद्रिय इंद्रियों से अतीत का सुख, अतीन्द्रिय सुख अंत समय का गायन है। अंत समय का गायन इसलिए है कि जो भी गोप गोपियां होंगी गुप्त पुरुषार्थी उस समय बहुत मौज में अनुभव करेंगे। सारी दुनिया में हाहाकार होगा सुनाई नहीं रहेगी। दुनिया हाहाकार करेगी और बाप के बच्चे खुशनुमा नजर आएंगे। इंद्रिय सुखकर ये तो अलग अलग हरेक की स्टेज है। अगर कोई की ऐसी स्टेज बनी हुई है या बनती है तो अभी भी अनुभव करता होगा। इंद्रियों का सुख लेगा तो उसका रिजल्ट सामने आएगा। इंद्रिय सुख लेता होगा तो अलकापन महसूस होगा, बारीपन होगा ही नहीं।
अभी के पॉइंट में बात बताइए, अतिंद्रिय सुख अनुभव करने वालों की निशानी एक तो अंत समय का गायन है और अभी जिनको याद के आधार से याद की पराकाष्ठा से ऐसा सुख महसूस करने वाले हल्केपन की अनुभूति करेंगे। ये श्लोक संबंधित पॉइंट्स हो गए। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।